हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा और बोला, ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो, कैसे भी करके 2 घंटे में सुनैना का पता लगाओ, वो जहाँ भी है। आदित्य के यह कहते ही नदीम और अरविंद दोनों ने उसकी ओर देखकर सिर हल्का सा झुकाया और तुरंत वहां से बाहर निकल गए। आदित्य की अनुमति मिलते ही वे दोनों अपना काम शुरू करना चाहते थे। वे इस बार आदित्य को निराश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि आदित्य के लिए सुनैना कितनी महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं मिली तो आदित्य उन्हें काम से निकाल सकता था, फिर चाहे वे कितने ही सालों से उसके लिए काम क्यों ना कर रहे हों। दोनों आदित्य के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके बाहर निकलने के बाद आदित्य उठा, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर अपना लैपटॉप निकाला, जो बेड के बगल में बने सीक्रेट ड्रॉयर में रखा था। लैपटॉप खोलते ही आदित्य ने बगल में रखे चश्मे लगाए और फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए ध्यान से स्क्रीन की ओर देखने लगा। अक्षत और नैना को भी पता चल गया था कि सुनैना गलती से किसी और की कार में बैठकर चली गई है। वे सभी उसके लिए बहुत परेशान थे। इसके अलावा अक्षत के पास बार बार रागिनी का कॉल आ रहा था। सुनैना के गायब होने से वो इतना परेशान था कि अपने प्लान पर काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से रागिनी को उस पर शक हो रहा था। अक्षत के फोन पर आदित्य की सुरक्षा कर्मियों का भी कॉल आया और उन्होंने उससे घर की सीसीटीवी फुटेज मांगी, ताकि पता चल सके कि सुनैना किसके साथ गई थी। उसने विवान को ये काम करने को कहा। विवान उसकी बात मानकर सिक्योरिटी रूम की ओर चला गया। उसके जाते ही अक्षत दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। नैना कॉफी लेकर आई और उसे ऐसे देखकर कॉफी टेबल पर रख पीछे से खड़े होकर उसके सिर पर हल्के हाथों से मालिश करने लगी। अक्षत ने उसका एक हाथ पकड़कर उसके हाथ के पोर पर हल्का सा चुंबन किया। नैना ने भी झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा अक्षत, डोंट वरी। उसकी बात सुनकर अक्षत थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, शायद मुझे ये तुम्हें कहना चाहिए था, सुनैना नहीं मिल रही है, इस वजह से तुम भी परेशान हो रही होगी और मैं अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ हूँ। नैना पीछे से आकर उसके साथ बैठ गई। क्या हुआ, बताओ मुझे, हमेशा तुम्हें ही मुझे संभालना जरूरी नहीं है, मैं भी तुम्हें संभाल सकती हूँ ना। अक्षत ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। आई एम सो लकी टू हैव यू, लेकिन अभी तुम्हें पता है रागिनी और हमने जो प्लान किया है उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसका कॉल आ रहा है, अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा और मिलने नहीं जाऊंगा तो उसे हम पर शक हो जाएगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। नैना ने उसके हाथ पर हाथ रखकर समझाया, अरे नहीं, हमने इतनी मुश्किल से ये प्लान बनाया है, आखिर सच पता करने का यही तो एक रास्ता है, इसलिए तुम ऐसा कुछ मत सोचो और जाओ उससे मिलने, यहाँ मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। नैना के कंधे पर सिर झुकाते हुए अक्षत बोला, थैंक यू सो मच नैना, तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करता अकेले। उसकी बात सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। उसने अक्षत के सिर पर हाथ फेरा और दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे। जब अक्षत का मोबाइल फिर से बजा तो वो सीधा बैठा और कॉल रिसीव किया। जैसी उसे उम्मीद थी, रागिनी का ही कॉल था। कॉल रिसीव करते ही अक्षत बोला, हाँ, अच्छा, बात करनी है, लेकिन क्या बात, कल ही तो बात की थी। अच्छा ठीक है, अभी मैं शूट पर हूँ, पैकअप होते ही आता हूँ, और प्लीज बार बार कॉल मत किया करो, दिन भर फोन मेरे पास नहीं रहता, तुम्हें पता है ना। उसके साथ बैठी नैना उसकी ओर देख रही थी और अक्षत जो बोल रहा था वो उसे सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ से रागिनी क्या बोल रही थी ये उसे नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि कॉल स्पीकर पर नहीं था। 2 मिनट से कम समय में अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मोबाइल फोन अपनी जेब में रखते हुए बोला, पागल कर देगी ये लड़की मुझे, पता नहीं ये आखिर चाहती क्या है, मैंने इसे ये भी बता दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी पीछे पड़ी हुई है और इतना बड़ा झूठ बोल रही है। अक्षत के हाथ पर हाथ रखकर नैना ने समझाया, डोंट वरी अक्षत, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, जल्दी ही पता चल जाएगा रागिनी का इरादा, लेकिन इसके लिए थोड़े टाइम तक झेल लो उसको, बाकी मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। उसकी बात समझते हुए अक्षत ने सिर हिलाया, वह उसकी बातें समझ रहा था और उसने रागिनी से पूरी तरह निपटने का मन बना लिया था। अनय का घर। उस बड़े घर में फिलहाल मनस्वी और अनय ही थे। उस दिन के बाद से दोनों आपस में खास बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी सोच में डूबे हुए दोनों परेशान थे। अनय को पता चल गया था कि रवि से बात करके आदित्य सुरक्षित है, लेकिन वो कहाँ है और अगर अनय उससे बात करना चाहे तो बात नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर मनस्वी को पता चल गया था कि विराज सुनैना को लेकर कोई बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन वो कहाँ है और क्या करना चाहता है ये उसे नहीं पता था। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के सामने थोड़ा असहज महसूस करते थे, लेकिन मनस्वी अभी भी अनय के कमरे में ही सोती थी क्योंकि उसे उसकी आदत हो गई थी। एक दिन जब वो अनय से बात करने में असहज महसूस कर रही थी तो वो अपने कमरे में लेट गई, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। आधी रात को 2 बजे वो वापस उसके कमरे में आ गई और अपनी जगह पर लेट गई। अनय ने उसे मना नहीं किया और ना ही इस बारे में कुछ पूछा, लेकिन अनय ने और कोई बात उससे नहीं की क्योंकि वह थोड़े अपराध बोध में था। उसे लगता था कि उसने अपनी बेरुखी और व्यवहार से मनस्वी को दुख पहुंचाया है। मनस्वी उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी और उनके रिश्ते को सामान्य करना चाहती थी, लेकिन अनय चाहकर भी उसका साथ नहीं दे पा रहा था। मनस्वी के कमरे में आते ही उसने देखा कि अनय ने अपना लैपटॉप टेबल पर खोला हुआ था और उसका मोबाइल भी वहां रखा था। वो लैपटॉप में ध्यान से लगा हुआ था। मनस्वी ने कमरे में आते हुए पूछा, कुछ पता चला आदित्य के बारे में? बात हुई तुम्हारी उससे? अनय ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया, नहीं, अगर पता चल जाता तो इस तरह से उसकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा होता मैं। मनस्वी उत्साहित होकर अनय के बगल में आकर बैठ गई। वाह, तुम्हें ये आता है क्या? बट ये इल्लीगल होता है ना? उसके इतने पास आने से अनय के कीबोर्ड पर चलते हाथ रुक गए। उसने अपना चेहरा किनारे करके मनस्वी को देखा। मनस्वी उसकी नजरों का मतलब समझकर थोड़ी दूर खिसक गई, जबकि वह स्क्रीन पर देखना चाहती थी कि अनय क्या कर रहा था। मनस्वी अब अनय को पसंद करने लगी थी और उसे अपना पति मानती थी। वो उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उनके बीच की दूरियां मनस्वी की वजह से ही थीं। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सब कुछ नई शुरुआत कैसे करे और अनय को कैसे विश्वास दिलाए कि वो बदल चुकी है। मनस्वी वहां से उठते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। वह खुद को लेकर बहुत असुरक्षित थी। उसे लगता था कि अनय उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने पसंद करने लायक कुछ भी नहीं था। उसने अनय के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना ही कभी अच्छा व्यवहार किया, ना ही कभी वे सामान्य पति पत्नी की तरह रहे। शादी से लेकर आज तक उसने उसे केवल नीचा ही दिखाया है, तो वो उसे क्यों पसंद करेगा? वहां से उठकर जाते हुए मनस्वी का चेहरा उतरा हुआ था। अनय ने जैसे ही ये देखा, उसने मनस्वी का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, इट्स ओके, यू कैन सिट हियर। मनस्वी ने पीछे मुड़कर देखा और थोड़े उत्साह से कहा, ओ रियली? लेकिन फिर उसे लगा कि वह थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है, तो उसने खुद को संभालते हुए कहा, आई मीन थैंक्स, और वहाँ जो तुम कर रहे हो, सच बताओ, ये इल्लीगल और गलत तो नहीं है ना?
इतना बोलते हुए वो वापस अनय के बगल में बैठ गई और उसकी ओर देखते हुए वही सवाल दोहराया, देखो, गलत और सही तो हर चीज में होता है, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है कि हम किसी भी चीज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत। जब तक हमारे इस काम से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक ये उतना गलत नहीं है। मनस्वी ने अपनी पलकें झपकाकर आराम से कहा, ओके, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, बट कुछ पता चला या नहीं आदित्य का? बात हुई तुम्हारी उससे? वो और उसकी वाइफ दोनों सेफ तो है ना? मनस्वी की समझदारी भरी बातें सुनकर अनय प्रभावित हुआ। ओहो, क्या बात है, लगता है मुझसे ज्यादा फिकर तो तुम्हें है आदित्य की। वैसे इतना तो पता है कि वो जहाँ भी है ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन विराज, उसका पता लगाया ना तुमने? कुछ क्लियर हुआ वो क्या प्लान कर रहा है? विराज का नाम आते ही मनस्वी के माथे पर बल पड़ गए। अनय को समझ आ गया कि वह उसे लेकर बहुत टेंशन में है और उसे कुछ खास पता नहीं चला है, इसलिए अनय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इतना मत सोचो, जो भी बात है तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, इतना तो भरोसा करती हो ना अब मुझ पर। अनय का स्पर्श महसूस करते ही मनस्वी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। क्रमशः